26 अक्टूबर दिन भर दिन सोमवार, मैं हूं रेहान फदल। अफगानिस्तान में जबरदस्त भूकंप, कई लोगों की मौत। पाकिस्तान और भारत में भी झटके महसूस किए गए।
इतना शदीद जलजला आया, इतने शदीद झटके थे, पूरी बिल्डिंग हिल रही थी और शीशे जो है वो हिल रहे थे। जलजले की जो है वो बहुत ज्यादा शिद्दत थी।
देखेंगे सुल्तानपुर के किसान क्यों नहीं गए नरेंद्र मोदी की रैली में, और इंडोनेशिया में छोटा राजन की गिरफ्तारी की खबर।
हम लोगों ने पहले से ही इस संबंध में रिक्वेस्ट कर रखी थी, तो जानकारी जो प्राप्त हुई है कि बाली में इंडोनेशिया में छोटे राजन की गिरफ्तारी हुई है।
होंगे आपके पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। अफगानिस्तान के हिंदुकुश पर्वतों में आए एक शक्तिशाली भूकंप के झटके अफगानिस्तान के अलावा पाकिस्तान और भारत में भी महसूस किए गए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भूकंप के कारण हुए हादसों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तान में अधिकारियों ने कहा है कि एक इमारत के ढहने से 50 लोगों की मौत हो गई है। अफगानिस्तान में एक स्कूल में भगदड़ में 12 छात्राओं की मौत हो गई है और कुछ छात्राएं घायल हो गई हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। भूकंप के जोरदार झटके दिल्ली में भी महसूस किए गए। अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया है कि भूकंप की तीव्रता 7.5 मापी गई है। यूरोपियन कमीशन ने कहा है कि प्रवासी संकट से निपटने के लिए ग्रीस को अतिरिक्त मदद दी जाएगी। यूरोपियन कमीशन और बाल्कन देशों के बीच ब्रुसेल्स में रविवार को एक समझौता हुआ, जिसके मुताबिक ग्रीस इस साल के अंत तक 30,000 प्रवासियों के लिए स्वागत केंद्र बनाएगा। वहीं स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री मीरो सेरार ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया को सीमा बंद न करने की चेतावनी दी है। ऐसा डर जताया जा रहा है कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया भी सीमाएं बंद कर सकते हैं, जिसका सीधा असर ऐसा हो सकता है कि एक के बाद एक सभी देश सीमाएं बंद कर देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो ये अनर्थ होगा। ये यूरोप और यूरोपियन यूनियन के लिए अनर्थ होगा। ये थे मीरो सेरार के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सीरिया में पश्चिमी देशों का के समर्थन वाले विद्रोही गुट फ्री सीरियन आर्मी ने बीबीसी को बताया है कि रूस के समर्थन की पेशकश पर विचार करने से पहले रूस को सीरिया में हवाई हमले रोकने होंगे। फ्री सीरियन आर्मी के प्रवक्ता ने कहा कि वे ये देखना चाहते हैं कि रूस अपनी पेशकश को लेकर कितना गंभीर है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सीरिया के देशपरस्त विपक्षी गुटों को समर्थन देने की बात कही थी। भारत के गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि छोटा राजन को इंडोनेशिया में गिरफ्तार किया गया है। छोटा राजन पर भारत के अंडरवर्ल्ड से जुड़े होने के आरोप हैं और उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। सीबीआई के निदेशक अनिल सिन्हा ने पीटीआई से कहा है कि इंडोनेशिया के बाली प्रांत की पुलिस ने छोटा राजन को रविवार को गिरफ्तार किया। अनिल सिन्हा के मुताबिक इंटरपोल से अनुरोध के बाद बाली में पुलिस ने राजन को गिरफ्तार किया। नाइजीरिया के टेलीकॉम नियामक ने देश की सबसे बड़ी मोबाइल फोन कंपनी को $5 अरब का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। एमटीएन नाइजीरिया पर तय समय सीमा तक बिना रजिस्टर किए गए लाखों सिम कार्ड वाले नंबरों को बंद करने में नाकाम रहने की वजह से जुर्माना लगाया गया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। आज दोपहर भारतीय समय अनुसार 2:40 पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। अमरीकी भूवर्ग विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.5 थी और इसका केंद्र अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से 256 किलोमीटर उत्तर पूर्व में हिंदू कुश की पहाड़ियों में था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत के इलाकों में इस भूकंप से जान और माल के नुकसान की खबरें हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मरने वालों की संख्या 100 से ऊपर पहुंच गई है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे के साथ रोहित जोशी।
अब तक आई जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान में इस भूकंप से कम 100 लोगों की मौत की खबर है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में कम से कम 50 लोगों की मौत हुई है। وہیں افغانستان کے تخار علاقے میں بھوکمپ کے جھٹکوں کے دوران لڑکیوں کے ایک اسکول میں مچی بھگدڑ میں بھی 12 چھاترائیں ماری گئی ہیں. اس کے علاوہ کچھ چھاتراؤں کی استھتی گمبھیر بتائی جا رہی ہے. وہیں پوروی افغانستان کے جلال آباد شہر میں اسپتال سے ملی خبروں کے مطابق 5 لوگوں کی موت ہوئی ہے. کابل کے استھانیہ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے اتنا بھینکر بھوکمپ کبھی نہیں دیکھا. امریکی بھوگرب وگیان کیندر کے مطابق ریئیکٹر اسکیل پر اس بھوکمپ کی تیورتا 7.5 تھی. اس بھوکمپ کا کیندر افغانستان کی راجدھانی کابل سے 265 کلومیٹر اتر پورو میں ہندو کش کی پہاڑیوں میں تھا. ادھیکاریوں نے بتایا ہے کہ بھوکمپ سطح سے 212 کلومیٹر نیچے آیا تھا. پاکستان میں اسلام آباد اور کچھ انیہ علاقوں میں بی بی سی سنواداتاؤں نے لوگوں سے ان کے انبھو سنے. اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی کے چھاتر ابو بکیر بتاتے ہیں کہ جب بھوکمپ آیا تو ان کی کلاس چل رہی تھی.
ہم اٹینڈ کرتے کلاس بریک کے بعد ہی, تو اچانک سے زلزلہ آیا. پہلے تھوڑا اتنا تیز نہیں آیا تھا, ہم سمجھے رک جائے گا, لیکن اس کے بعد اچانک دوسرا جو آفٹر شاک آیا اس کے بعد سارے اسٹوڈنٹ جو نیچے کی طرف بھاگے ہیں, اور کافی لوگوں کو تو جگہ بھگدڑ مچی ہے, کافی لوگوں کو جگہ نہیں ملی ہے. لیکن اور راستہ بھی, کیونکہ یہاں پہ ہماری یونیورسٹی میں ایک ہی اور کوئی اس کے علاوہ راستہ نہیں ہے, تو اس وجہ سے کافی پرابلم.
اسلام آباد کے ہی مظہر علی نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ بھوکمپ کے جھٹکے کافی تیز تھے.
اتنا شدید زلزلہ آیا اور اس کے اتنے شدید جھٹکے تھے, پوری بلڈنگ ہل رہی تھی اور شیشے جو ہے وہ ہل رہے تھے, پانی تک جو ہے وہ محسوس ہو رہا تھا کہ زلزلے کی جو ہے وہ بہت زیادہ شدت تھی.
پاکستان میں ہندو کش پروت میں افغانستان کی سیما سے تقریباً 200 کلومیٹر کی دوری پر بسے شہر کریم آباد کے انس بتاتے ہیں. ہم کریم آباد کی بازار میں تھے جہاں سارے ہوٹل ہیں. میں کچھ چینی لوگوں کے ساتھ ٹہل رہا تھا. پہلے لگا کہ کوئی ہمیں ہلا رہا ہے. ہم تقریباً 20 لوگ تھے. ہم نے ایک دوسرے کو پکڑ لیا. ایسا لگ بھگ 20 سے 30 سیکنڈ تک ہوا. ٹھیک اس کے بعد ایک بڑا بھوسکھلن ہوا. یہ ہماری آنکھوں کے ٹھیک سامنے ہی ہوا. اب میں اپنے ہوٹل میں واپس آ گیا ہوں. مجھے اب بھی سب طرف دھول ہی دکھائی دے رہی ہے. یہ پہاڑ ہنجا ندی میں جا کر گرا تھا. دھول اب بھی سب طرف ہے. یہ تھے کریم آباد میں رہنے والے انس کے شبد. اسلام آباد میں ایک ایمبولینس ڈرائیور بتاتے ہیں.
میں گاڑی میں بیٹھا تھا, ٹھیک ہے. میں نے جب دیکھا ایمبولینس ایسے ایسے ہل رہی ہے, میں اس کے پیچھے بیک سائڈ پہ گیا. میں کہا شاید کوئی لڑکا چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے. تو پیچھے دیکھا کوئی لڑکا نہیں ہے. تو پار میں نے سامنے کوٹھی کی طرف دیکھا تو وہ بالکل تلترا رہی تھی. اسی دوران میں نے درود شریف کلمہ پڑھنا شروع کر دیا.
پاکستان اور افغانستان میں بھوکمپ کے بعد موبائل سیوا بڑے پیمانے پر بادھت ہوئی ہے. بھوکمپ کے جھٹکے بھارت پرشاست جموں کشمیر, پنجاب, ہریانہ, دلی اور اس کے آس پاس کے راجیوں میں بھی محسوس کیے گئے ہیں.
افغانستان اور پاکستان میں زبردست بھوکمپ کے جھٹکوں کے بعد لوگ اپنے گھروں اور دفتروں سے باہر نکل آئے. دلی میں بھوکمپ کے جھٹکے محسوس کیے جانے کے ساتھ ہی میٹرو پریچالن بھی روک دیا گیا, جو کہ بعد میں بحال کر دیا گیا. اس دوران سپریم کورٹ کی کاروائی بھی بیچ میں ہی روک دی گئی. شری نگر میں بھی بھوکمپ کا اثر دکھائی دیا. وہاں سے بھی نقصان کی خبریں ہیں. لوگوں میں اس بھوکمپ سے زبردست دہشت پھیل گئی. شری نگر سے ماجد جہانگیر کی رپورٹ.
افغانستان میں آئے بھوکمپ سے بھارت پرشاست جموں کشمیر میں بھی آج دن کے 2:40 پر بھوکمپ کے زوردار جھٹکے قریباً 2 منٹ تک محسوس کیے گئے, جس دوران سری نگر شہر اور گھاٹی کے دوسرے علاقوں میں افراتفری کے عالم میں لوگ گھروں اور دفتروں سے چیختے چلاتے باہر سڑکوں پر اپنی جانیں بچانے کے لیے آ گئے.
ایٹ دی ٹائم آف مومنٹ آئی واز ایٹ بٹمالو نیئر میونسپلٹی. جیسے ہی میں دیکھ رہا ہوں, جیسے ہی میں وہاں پہ پہنچا, وہاں پہ فورسز کے لوگ بھاگ رہے تھے. آئی تھاٹ کہ شاید بلاسٹ ہوا ہے, اس وجہ سے یہ بھاگ رہے ہیں. جب میں رکا, مجھے سبھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہو. میں دیکھ رہا ہوں میونسپلٹی کی جو بلڈنگ ہے وہ اتنی ویو کر رہی ہے, سبھی آفس سے باہر نکل کے نا رو رہے ہیں روڈ پہ اس وقت. دین سبھی پھر اللہ کا نام لے کے, وی تھاٹ کہ اٹ از اے فائنل ڈیسٹینیشن فار وی پیپل. تو یہی محسوس ہو رہا تھا کہ شاید قیامت کا ٹائم ہے.
بھوکمپ کے زوردار جھٹکوں سے کشمیر گھاٹی کے کلگام, بڈگام, اننت ناگ, بارہمولہ, پلوامہ, کپواڑہ اور بانڈی پورہ میں رہائشی مکانوں, سرکاری اور غیر سرکاری عمارتوں کو نقصان پہنچنے کی خبریں مل رہی ہیں. اننت ناگ کی 21 ورشیہ انشامین نے پہلی بار اپنی زندگی میں بھوکمپ کے ایسے जोरदार झटके महसूस किए।
हमें लगा कि शायद ऐसी थोड़ा सा हो रहा है। जब हम बाहर निकले तो सारे रो रहे थे, हमें लगा कि अभी मकान हम पे गिर जाएंगे। तो हमें इतना महसूस हुआ कि शायद हमारा जिंदगी का लास्ट दिन है, हम शायद बच नहीं पाएंगे।
उधर जिला राजौरी में भी मकानों को भूकंप के झटकों से शदीद नुकसान पहुँचने की खबरें हैं। इस दौरान दक्षिणी और उत्तरी कश्मीर में दो महिलाओं की भूकंप के झटकों से दिल का दौरा पड़ने के साथ मौत हो गई है। भूकंप के झटकों के एक घंटे बाद भी लोग अपने घरों में खौफ की वजह से वापस नहीं जाना चाहते थे। कुरत कहती है,
जब पहला झटका आया तो हम ऊपर कमरे में बैठे थे, तो हमें लगा ऐसे थोड़ा सा, फिर जब थोड़ी देर के बाद इतने तेज से आया फोर्स से, हम नीचे आगे दौड़ के तो बाहर सारे रो रहे थे।
राज्य सरकार ने श्रीनगर के सेक्रेटरियट में कंट्रोल रूम कायम कर राज्य के हालात पर नजर बनाए रखी है। ये पिछले 10 वर्षों में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब जम्मू कश्मीर में भूकंप के जोरदार झटकों ने सबको झिंझोड़ कर रख दिया हो। वर्ष 2005 में भी पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में भूकंप आने से हजारों लोगों की मौत हो गई थी। माजिद जहांगीर, बीबीसी हिंदी, श्रीनगर।
पंद्रह साल पहले एक मेले में खोने के बाद सरहद पार कर पाकिस्तान भटक कर जाने वाली गीता आखिरकार अपने वतन भारत लौट आई हैं। पाकिस्तान से दिल्ली पहुंची गीता के साथ वहीं के एक निजी संस्थान के वो लोग भी थे जिन्होंने इतने सालों तक उसका ख्याल रखा, मगर बिहार के जिस परिवार ने उसके अपनी बेटी होने का दावा किया है, गीता ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया है। सीमा पर व्याप्त तनाव के बीच दोनों देशों के दरमियान गीता के बहाने ही सही थोड़ा तो माहौल हल्का होता दिखा। रिपोर्ट के साथ सलमान रवि।
बिहार के सहरसा के रहने वाले जनार्दन महतो और उनका पूरा परिवार उदास है क्योंकि पाकिस्तान से भारत लौटी गीता ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया है। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि इसके बावजूद सरकार डीएनए टेस्ट के परिणामों का इंतजार करेगी।
लेकिन आज जब हमने महतो दंपति को और तीन भाई भी आए थे उनको गीता के सामने किया तो अभी गीता उन्हें पहचानने से इनकार कर रही है। वो कह रही है कि ये मेरे माता पिता नहीं हैं, लेकिन चूंकि डीएनए टेस्ट के लिए उनका रक्त भी जा चुका है और इसका भी जा चुका है, तो डीएनए टेस्ट का हम अभी इंतजार करेंगे क्योंकि हो सकता है इतने पहले बहुत बच्ची थी जब गई थी, शायद थोड़ी शक्ल बदली हुई लग रही हो, तो इतना सा थोड़ा एक संदेह अभी बाकी है।
विदेश मंत्री का कहना था कि फिलहाल गीता को इंदौर की एक निजी संस्था के साथ रखा जाएगा,
लेकिन अभी चूंकि वो इनकार कर रही है कि ये मेरे माता पिता नहीं है, तो हमने तय किया है कि अभी हम गीता को इंदौर की संस्था में भेजेंगे। संस्था बहुत प्रतिष्ठित है, बहुत अच्छी है, और जब हमने भी पूछा कि बताओ इनके साथ जाना चाहोगी या इनके साथ, तो उसने स्वयं ये कहा कि मैं मोनिका और वार्डन के साथ जाना चाहूंगी।
सुषमा स्वराज ने गीता के भारत वापस आने पर पाकिस्तान की सरकार का आभार भी प्रकट किया।
क्यों करूंगी अगर मैं पाकिस्तान हुकूमत का शुक्रिया ना करूं, तो इसलिए मैं तहे दिल से पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, क्योंकि जैसे ही हमने उनको बताया कि वो हिंदुस्तान की बच्ची है, नेशनलिटी इस्टैब्लिश हो चुकी है, हम उसे हिंदुस्तान ले जाना चाहते हैं, तो बिना किसी अगर मगर के, बिना कोई अड़चन डाले, उन्होंने उसके कागज तैयार करवा दिए, जिसके कारण गीता आज यहाँ है।
पाकिस्तान सरकार के साथ साथ भारत के विदेश मंत्री ने गीता की देखभाल करने वाली संस्था एधी फाउंडेशन के संचालकों को राजकीय अतिथि बताते हुए उनका भी शुक्रिया अदा किया।
इसके साथ ही मैं शुक्रिया अदा करती हूँ ईदी फाउंडेशन का। महतरिमा, मेरे पास अल्फाज नहीं है आपके शुक्रिया अदा करने को। मैंने अलग से तो आपका शुक्रिया अदा किया है, लेकिन जाहिरा तौर पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने हमारी बच्ची को माँ की मोहब्बत भी दी और उसके मजहब की हिफाजत भी की। मैं अपनी ओर से, अपने वजीर आजम की ओर से, हिंदुस्तान के तमाम अवाम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी, और आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ।
इन सब के बावजूद जनार्दन महतो के भाई ब्रह्मदेव को अब भी भरोसा है कि डीएनए टेस्ट में साबित हो जाएगा कि गीता उन्हीं की बेटी है।
वो इनकार कर गया है, हो सकता है उसका दिमाग ऑल बॉल में होगा, बहुत बड़ा भीड़ में होगा, प्रेशर में होगा, इसे लेकर कर दिया होगा, बोला होगा, माइंड पर इफेक्ट होगा, बोल दिया होगा, तो इसका बहुत सारे उपाय भी तो है, उसको लाया जाए, उसको यहाँ पहुँचाया जाए, नगर देख करके अपने सामने आ जाएगा।
बहरहाल जनार्दन महतो के परिवार वालों और गीता के खून के सैंपल ले लिए गए हैं। अब सबको इंतजार है उस जांच रिपोर्ट का जिससे पता चल पाएगा कि गीता के माता पिता की खोज अब भी जारी रहेगी या फिर वो जनार्दन महतो की ही बेटी है। सलमान रावी, बीबीसी दिल्ली।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। इंडोनेशिया की पुलिस ने दावा किया है कि उसने भारत में कई अपराधों के लिए मोस्ट वांटेड चल रहे अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को बाली में गिरफ्तार कर लिया है। भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह और सीबीआई ने भी इस गिरफ्तारी की पुष्टि की है और कहा है कि सीबीआई ने इंटरपोल से छोटा राजन की गिरफ्तारी का आग्रह किया था। एक रिपोर्ट के साथ रोहित जोशी।
बाली की पुलिस के प्रवक्ता हेरी वियेंटो ने बताया है कि पुलिस ने राजेंद्र सदाशिव निखलांजे को गिरफ्तार कर लिया है। निखलांजे को दुनिया अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के नाम से जानती है। वियेंटो ने बताया है कि उन्होंने छोटा राजन को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो बाली एयरपोर्ट पहुंचा। वियेंटो ने ये भी बताया है कि इंटरपोल की ओर से उन्हें छोटा राजन के पहुंचने की सूचना मिली थी। वियेंटो ने कहा है कि ऑस्ट्रेलियाई पुलिस से मिली एक गुप्त सूचना के आधार पर उन्होंने रविवार को छोटा राजन को सिडनी से बाली के एक चर्चित रिजॉर्ट में जाते हुए हिरासत में ले लिया। उन्होंने कहा है कि बाली पुलिस इंटरपोल और भारतीय अधिकारियों से भी संपर्क बनाए हुए थी। इंडोनेशियाई पुलिस का कहना है कि छोटा राजन को जल्द ही भारत भेज दिया जाएगा। इधर भारत में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी छोटा राजन की गिरफ्तारी की पुष्टि की है।
हम लोगों ने पहले से ही इस संबंध में रिक्वेस्ट कर रखी थी, तो जानकारी जो प्राप्त हुई है कि बाली में इंडोनेशिया में छोटे राजन की गिरफ्तारी हुई है। मैं समझता हूं कि अब उसके बारे में पूरी तरह से आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन जब हो जाएगा तो उसके बाद जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वह आवश्यक कार्रवाई भारत सरकार करेगी।
सीबीआई की प्रवक्ता दिलप्रीत सिंह ने भी बीबीसी से बात करते हुए बताया है कि बाली पुलिस ने छोटा राजन की गिरफ्तारी की है।
सीबीआई इंटरपोल इंडिया की रिक्वेस्ट पे बाली पुलिस ने एक इंडियन नेशनल मोहन कुमार को कल गिरफ्तार किया है। मोहन कुमार एलियस राजेंद्र सदाशिव निकलजे एलियस छोटा राजन को कल गिरफ्तार किया है।
वहीं ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस के प्रवक्ता ने कहा है कि कैनबरा में इंटरपोल ने इंडोनेशियाई अधिकारियों को अलर्ट किया था जिसने भारतीय अधिकारियों के आग्रह पर निखलांजे को गिरफ्तार किया। छोटा राजन को 1995 से ही इंटरपोल ने वांटेड लिस्ट में डाला हुआ था। छोटा राजन तब से ही फरार चल रहा था।
इंडोनेशिया में छोटा राजन की गिरफ्तारी। कल प्रधानमंत्री की हाजीपुर में सुल्तानपुर गांव के पास रैली हुई थी। रैली स्थान किसानों की धान की खेती काट कर तैयार किया गया था। किसानों को उसका मुआवजा तो दिया गया लेकिन इससे कई किसान निराश हैं और इस वजह से वो रैली में नहीं आए। हालांकि एक तबका इसे मोदी विरोध की राजनीति से जोड़कर देख रहा है। हाजीपुर से पंकज प्रियदर्शी की रिपोर्ट।
हाजीपुर के निकट सुल्तानपुर गांव का वो इलाका आज सुनसान है जहां रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की खूब चर्चा थी। रैली के लिए जो तैयारियां की गई थीं, बांस और बल्लम लगाए गए थे, अब हटाए जा रहे हैं। छोटे छोटे ट्रकों से सामान हटाए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले जो मजदूर मंच बनाने और घेराबंदी करने में लगे थे, अब वही मजदूर उसे हटाने में लगे हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की रैली के लिए जिन किसानों की धान की खेती काट दी गई थी उनमें से कुछ लोग नाराज हैं। कुछ लोगों को मुआवजे की कम राशि पर एतराज है, तो कुछ लोग चुनिंदा लोगों के विरोध को राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राजनीतिक तौर पर नरेंद्र मोदी का विरोध तो कर रहे हैं लेकिन वे मुआवजे की राशि से पूरी तरह संतुष्ट हैं। रैली वाले क्षेत्र में बिंदेश्वर राय के पास 2 एकड़ से ज़्यादा की जमीन है और 5 कट्ठे के आसपास की जमीन को छोड़कर उनकी बाकी जमीन से धान की फसल काट दी गई। वो कहते हैं,
हम तो रैली लोग आया था लेकिन हम माने नहीं आए। नाराजगी है ना कि कोई रुका उसको 5,000 को मिला और जिसको माने बढ़िया विधान था तो कहा कि हम ऐसे कम नहीं लेंगे तो उसको 5,000 के मिला। उसके जैसा मेरा धान था तो 1900 के दिया, कोई के 700 के दिया, कोई के 600 के मिला।
और तो और जिसके खेत में हेलीपैड बनाया गया था वो तो और निराश हैं क्योंकि ईंट बालू और सीमेंट के इस्तेमाल के कारण उन्हें अपने खेत को उपजाऊ बनाने में लंबा समय लग सकता है।
ये वाली खेती आपकी है?
हाँ, इसमें है मेरा भी कुछ।
तो इसके लिए क्या कुछ ज़्यादा मुआवजा मिला था?
नहीं, ज़्यादा मुआवजा नहीं मिला था।
कितना मिला है?
2,000 रुपये कट्ठा मिला है।
तो ये कितना कट्ठा में था ये पूरा?
मेरा 6 कट्ठा है।
और नहीं, ये हेलीपैड वाला इलाका,
ये 1 कट्ठा इसमें पड़ेगा मेरा।
तो आप बताइए कि ये इसको खेती लायक बनाने में कितना टाइम लगेगा?
दो ढाई साल।
लेकिन इस रैली के कारण प्रभावित हुए लोगों में एक और तबका बटाईदारों का है, जो खेत के मालिक नहीं है। उन्होंने पूंजी तो पूरी लगाई लेकिन मुआवजा खेत के मालिकों को मिला और उन्हें इसका बहुत कम हिस्सा मिला।
मुआवजा तो कहाँ मिला, थोड़ा सा मिला मुआवजा, वो खेत वाला ले लिए।
खेत वाला ले लिए मतलब? अच्छा, जो जिनका खेती है, जो मालिक है।
हाँ,
तो आप लोगों को कितना नुकसान हो गया?
हमारा तो सोरहनी नुकसान है, हम बरदारी है तो सोरहनी फसल नुकसान हो गया।
तो पूरा पूंजी इसी का लगा?
पूरा पूंजी लगा हमरो।
रैली के विरोध को लेकर भी लोग एकमत नहीं है। कई लोगों का कहना है कि गांव में किसी ने रैली का विरोध नहीं किया। कुछ लोग अगर रैली में नहीं आए तो ऐसा राजनीतिक विरोध के चलते था, न कि मुआवजा के कारण। पप्पू पासवान कहते हैं,
ऐसा कुछ बात नहीं, जो ऑटोमेटिक जो माइंड मेकअप लोगों का होता है वो अपना मन से ही लोग करते हैं। अब जिसका माइंड मेकअप था कि हमको नहीं जाना है तो नहीं जाना है। अधिकांश लोग तो ऐबे किए हैं, मान के चलिए कि 99% लोग आए हैं।
सुल्तानपुर गांव के राम जन्म राय खुलकर नरेंद्र मोदी का विरोध तो करते हैं लेकिन कहते हैं कि मुआवजे की राशि उचित थी और गाँव में किसी ने रैली का बहिष्कार नहीं किया था।
उस पर कहना क्या रहेगा, वो हम लोग का मुआवजा मिला, 2000 के कट्ठा मिला है और जितना किसान था उस सबको 2000 के कट्ठा के हिसाब से मिला है। संतुष्ट तो एक कारण हम लोग हैं कि इसे जमीन बारिश बिना हम लोग का धान नहीं होने वाला था और जो आ गया से हम लोग का तो संतुष्ट ये है कि 2000 के कट्ठा मिला। अगर नहीं होता धान तो कई पैसा होता, एक पैसा नहीं होता। ऐसे तो खैर धान के मुआवजा यही मिला से आ गया।
दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आरोप बेबुनियाद हैं और किसानों को उचित मुआवजा दिया गया है और उनकी सहमति से ही सब कुछ हुआ है। वैशाली के जिला भाजपा प्रमुख संजय सिंह कहते हैं,
कोई इस प्रकार की बात नहीं है और जितनी जमीन हम लोगों ने इस उपयोग में लाई है उसमें से कोई भी किसान ऐसा नहीं बचा है और सब लोगों ने अपनी लिखित स्वीकृति उसके आधार पर हम लोगों ने ये कार्यक्रम कराया है।
लेकिन इतना तो तय है, ये एक जगह की बात नहीं है। बड़े नेताओं की रैली के कारण किसानों की खेती पर असर पड़ता है और मुआवजे की राशि को लेकर नाराजगी इसी का एक हिस्सा है। पंकज प्रियदर्शी, BBC, हाजीपुर, बिहार।
आज सोमवार है और आज का दिन होता है आपके पत्रों का।
श्रोताओं की चिट्ठियों के साथ मैं हूँ स्वाति बख्शी और मेरे साथ आज फिर है BBC हिंदी सेवा के संपादक निधीश त्यागी।
श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
पहली मैं ईमेल ले रही हूँ जंग बहादुर सिंह की गोल पहाड़ी से। ये ईमेल आई है और लिखते हैं कि साहिर लुधियानवी की 35वीं पुण्यतिथि पर विवेचना में रेहान जी ने उन अनछुए पहलुओं पर रोशनी डाली जिसकी मुझे जानकारी नहीं थी और इन्होंने कहा कि रेहान जी को धन्यवाद दीजिएगा।
जरूर, विवेचना हम सबके लिए बहुत एक खास कार्यक्रम है और हम सब लोग उसको उतना ही पसंद करते हैं, उतने ही मजे लेते हैं उसके जितने शायद आपने लिए
जी। लेकिन एक और चिट्ठी आई है जिसमें एक सवाल उठाया है इन्होंने। धीरज तोतीराम पाखरे ने चिट्ठी लिखी है अकोला से और ये कहते हैं कि आपने भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर कोई भी सीरीज या विवेचना प्रस्तुत नहीं की है।
शायद विवेचना नहीं हुई होगी पर मेरे ख्याल से डॉक्टर अंबेडकर पर और दलित विषयों पर हम लोग ज़्यादा सजग होते हैं किसी भी बाकी मुख्य धारा वाले मीडिया संस्थान से और हमने इस पे काफ़ी पहले काफ़ी सारा काम किया है। पर आपका सुझाव अच्छा है और हम लोग इस पे बिल्कुल कोशिश करेंगे कि एक डॉक्टर अंबेडकर और उनके उठाए हुए मुद्दों पर एक ज़्यादा गंभीर या विवेचना जैसा कोई कार्यक्रम किया जाए
जी। और ये पोस्टकार्ड जो आया है भुवनेश्वर महंत का, इनकी हैंडराइटिंग जैसा कि आप कह रहे थे काफ़ी खूबसूरत है। इन्होंने लिखा है कि NDA सरकार बनने के बाद BJP, शिवसेना और कुछ कट्टर हिंदू संगठनों की राजनीतिक उग्रता और सामाजिक लंपटता में और अधिक बढ़ोतरी दिखाई दे रही है जो किसी लोकतांत्रिक देश के एजेंडे के सर्वथा विपरीत है। बड़ी दिलचस्प बात लिखते हैं कि अगर हमें वसतुल्ला खां की डायरी अच्छी लगती है तो इसमें गलत क्या है।
फुसत का एक अपना अलग अंदाज़ है और आप जिन नए तरह के विषयों से हम इस समय का जो समाज और राजनीति जिससे दो चार हो रहा है उसकी तरफ आपका इशारा है जो कि हम लोग भी देख रहे हैं और हमसे जो बन पड़ता है वो हम लोग कर रहे हैं।
जलेश्वर तिवारी का पोस्टकार्ड आया है डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज बिहार से, कहते हैं कि हिंदी सर्विस के कार्यक्रम में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, कार्यक्रम खत्म होने के बाद आप लोग अपना पता ठिकाना थोक भाव से बताते हैं लेकिन पत्रोत्तर नदारद।
जलेश्वर जी, अगर आप मेरी आवाज़ इस समय सुन रहे होंगे तो आपको अपने सवाल का और आरोप का दोनों का जवाब मिल गया होगा। सोमवार और बृहस्पतिवार दोनों शाम को श्रोताओं के और वेबसाइट के पाठकों के पत्रों के बारे में बातचीत यहाँ सुन सकते हैं।
सुरेंद्र का ईमेल है, लिखते हैं कि भारत प्रशासित राज्य पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान और आरएसएस को लेकर तरह तरह के सवाल और शंकाएं उठ रही हैं जो बेहद खतरनाक हैं, और इस दृष्टि से पंजाब देश का अहम राज्य रहा है, लेकिन बीबीसी हिंदी की इस पर कोई जवाबदारी है या फिर केवल बिहार चुनाव?
बिहार चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, पर पंजाब में जो हो रहा है वो उस पर भी हम लोगों की निगाह बनी हुई है। हमारे वहाँ स्ट्रिंगर हैं रविंदर सिंह रॉबिन, जो लगातार वहाँ से कवरेज करते रहे हैं, और अभी जुबैर वहाँ से लौट कर आए हैं, उनके भी डिस्पैचेस अब सुनाई देंगे आपको और वेबसाइट पे दिखाई देंगे।
रिजवान अंसारी का ईमेल है सुपौल बाजार दरभंगा से, और मुझे नहीं पता कि ये क्यों ऐसा कह रहे हैं। इनका कहना है कि फैलाव जारा सुना और सुनकर अच्छा लगा, लेकिन कुछ आपत्तिजनक तथ्यों को छोड़कर, पर मैं इसकी आलोचना नहीं करूंगा क्योंकि आप फिर यही कहेंगे कि ये आपकी नहीं सुनील खिलनानी की रचना है।
मैं फिर कह रहा हूँ कि सुनील खिलनानी की ही रचना है, पर यह कि बहुत सारे लोगों के बारे में जब आप लिखने बैठते हैं और उनके बारे में बताने बैठते हैं तो आप शायद ये बात देखना चाहते हैं कि उनका योगदान क्या था, ये नहीं कि उन्होंने बखेड़े या विवाद क्या खड़े किए। और मुझे अपने बचपन की जो याद होगी, जैसे कि आपको भी होंगी शायद, कि उस समय जो आप जिस तरह से पढ़ना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, जिनके बारे में, जिनको जानना चाहते हैं, तो उनके योगदान को आप उस तरह से देखना भी चाहते हैं। तो जो फैला उजियारा जो कार्यक्रम है, खास तौर पर उन नए बच्चों, किशोरों, किशोरियों के लिए है, जो कि शायद ज़्यादा उसको पसंद करें।
इंडिया बोल पर दो कम से कम ईमेल मेरे हाथ में हैं, इनमें से एक महेश पालीवाल का, ये लिखते हैं कि दलितों के मुद्दे पर इंडिया बोल कार्यक्रम क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको क्या ये मुद्दे संवेदनशील नहीं लगते हैं? और दूसरी जो ईमेल है अभिषेक सिंह की, वो कहते हैं कि आप ने जो ये कार्यक्रम इंडिया बोल शुरू किया, इसको आपको बंद कर देना चाहिए या इसका नाम बदलकर बीबीसी मेहमान बोल कर देना चाहिए, क्योंकि मेहमानों को बुलाना बंद कर दें क्योंकि वो इतना बोलते हैं कि श्रोताओं को मौका नहीं मिलता है। आपने वैसे भी कार्यक्रम आधे घंटे का कर दिया है और सिर्फ कुछ ही श्रोताओं को शामिल किया जाता है।
मेरे ख्याल से जो दूसरा खत है वो उनके सरोकार, मैं उसे सहमत हूँ, पर यह कि वो जो विषय जैसा होता है और उस समय जिस तरह से वो बात अपने आप जब निकलती है तो फिर वो अपने हिसाब से चलती जाती है, और इसलिए वो थोड़ा सा मुश्किल होता है कि हर बार उसको एक तरह के एक सीधे से अनुपात में उसको रखा जा सके। हालांकि हमारी कोशिश यही होती है कि उसमें श्रोता और अपने विचार जितने अधिक आ सकें उसमें उसको उनको शामिल किया जाए। दलितों पर अभी बात ही हो रही थी, विवेचना उस पर होना चाहिए, और अब कोशिश करेंगे कि उस पर इंडिया बोल भी करें
जी। और अब वक्त हो गया है श्रोताओं से विदा लेने का, तो हम यहीं पर आपसे विदा लेते हैं।
नमस्कार, नमस्कार।
तो ये थे आपके पत्रों के उत्तर, और अब देखते हैं खेलों से क्या खबरें हैं। आदेश कुमार गुप्त मेरे सामने बैठे हुए हैं, बताइए।
जी रेहान, आज पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की जब उसने दुबई में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 178 रन से करारी हार का स्वाद चखाया। इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 491 रनों का विशाल लक्ष्य था, लेकिन उसकी दूसरी पारी 312 रन पर सिमट गई। इंग्लैंड के लिए जो रूट ने सर्वाधिक 71 रन बनाए, उनके अलावा आदिल रशीद ने भी 61 रनों की पारी खेली, लेकिन पाकिस्तान के यासिर शाह और जुल्फिकार बाबर ने शानदार गेंदबाजी की जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये जीत हासिल हुई। और अगर यासिर शाह की बात की जाए तो उन्होंने 87 रन देकर 4 और जुल्फिकार बाबर ने 53 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। इसके साथ ही पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में 1-0 की बढ़त ले ली है। उधर श्रीलंका ने भी कोलंबो में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज़ को 72 रन से हराया। वेस्टइंडीज़ के सामने जीत के लिए 244 रनों का लक्ष्य था, लेकिन उसकी पूरी पारी 171 रन पर सिमट गई।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदेश। और अंत में एक नज़र मुख्य समाचारों पर।
बीबीसी समाचार। अफगानिस्तान के हिंदुकुश पर्वतों में आए 7.5 की तीव्रता वाले भूकंप के झटके अफगानिस्तान के अलावा पाकिस्तान और भारत में भी महसूस किए गए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भूकंप के कारण हुए हादसों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। भारत के गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि छोटा राजन को इंडोनेशिया में गिरफ्तार किया गया है। छोटा राजन पर भारत के अंडरवर्ल्ड से जुड़े होने के आरोप हैं और उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पाकिस्तान से लौटी भारत की गीता बिहार के जनार्दन महतो के परिवार को नहीं पहचान पाई, जो उसे अपनी बेटी बता रहा है। सुषमा स्वराज ने कहा कि गीता ने अपनी शादी और बच्चा होने की बात से इनकार किया है। यूरोपियन कमीशन ने कहा है कि प्रवासी संकट से निपटने के लिए ग्रीस को अतिरिक्त मदद दी जाएगी। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यहीं विराम देते हैं। स्टूडियो संभाला था शाकिर आलम ने। रेहान फतल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।